प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 4 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज मेरे पास न्यूज के सेक्शन में इतने सारे समाचार हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्य विषय के रूप में मैं इसमें से किस एक को चुनूं, और यदि मैं किसी एक को चुन भी लेता हूं तो उसके साथ न्याय करना संभव नहीं होगा क्योंकि समाचारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको मैं छोड़ नहीं सकता। उन पर मुझे थोड़ी न थोड़ी बात आपसे करनी है और मुझे लगता है कि अगर मैंने थोड़ा थोड़ा वक्त उनको दे दिया तो बड़ा वक्त का कोई ऐसा टुकड़ा मेरे पास नहीं रह जाएगा कि मैं किसी एक विषय के साथ न्याय कर सकूंगा। तो मित्रों इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के मुख्य विषय का मैंने शीर्षक ही दे दिया है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जामिनेशन, कि जो आपके प्री एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस की उसके लिए जो तथ्यात्मक जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। आज का मुख्य विषय यही है और मैं जितने भी आपको तथ्यात्मक जानकारियां देने जा रहा हूं ये यूं कह लीजिए कि कल के रेडियो न्यूज, कल के दूरदर्शन न्यूज और आज के अखबारों पर आधारित है। राइट फ्रेंड्स, तो आज की जितनी भी बातें मैं कहूंगा आपको बहुत ध्यान से उन्हें सुनना है और सभी को समान महत्व देना है और इन्हीं में से ही मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चूंकि मैंने प्री के बारे में बातें की हैं तो इनका मेंस से कोई संबंध नहीं है। एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर का जो रियल पर्पज है वो है कि मैं आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप कर सकूं। ढेर सारी घटनाएं हैं, ढेर सारे समाचार हैं, उनमें से कौन सी घटनाएं, कौन से समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण हैं आप यह जान सकें, और फिर जब आप जान जाते हैं कि ये महत्वपूर्ण है तो आप उसके कोण को जान सकें कि ये किस एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल जानना बहुत जरूरी है जो आपको सिविल सर्विस के लायक, एग्जाम देने के लायक बना सके। तो मित्रों मैं जब चर्चा करता हूं तो आप इन बातों पर थोड़ा सा गौर किया कीजिए कि सर ने क्यों इस घटना को इंपॉर्टेंट माना है, और सामान्य तौर पर मैं जब उसकी चर्चा करता हूं तो मैं बता भी देता हूं कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों आप उन बातों का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कि कोई एक घटना घट रही है, उस घटना के बारे में 2-3 फैक्ट हैं, तो सिविल सर्विस वो 2-3 फैक्ट्स तक सीमित नहीं रहता है। जो एग्जामिनेशन होगा वो उसको एक्सटेंड करेगा, मतलब उसके बहाने वह कुछ और चीजें आपसे पूछ सकता है। मतलब केंद्र में यह घटना होगी, यह समाचार होगा, लेकिन इसके पेरिफेरी में, इसकी परिधि में जो दूसरी चीजें हैं वह उन पर पूछेगा, सीधे सीधे इस पर नहीं पूछेगा। ये अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने अपने पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया है जो कि स्वागत योग्य है। यही आपको सच पूछे तो अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, अपनी सक्षमता, अपनी योग्यता निर्धारित करने का समय भी मिलता है। तो मित्रों आइए अब मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में आपसे बातें कर रहा हूं। खबर आपने सुनी रेडियो न्यूज में कि हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल और जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। जब तक आप इसे सुनेंगे तो हो सकता है वो रवाना हो चुके हों। मित्रों इसमें 2 देश हैं, इजराइल और जर्मनी। अखबारों में आज आपने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा और डीडी न्यूज पर तो कल इजराइल के बारे में काफी चीजें भी बताई गई, काफी बातें बताई गई, एक्सपर्ट भी आए और उन्होंने भी इजराइल के बारे में चर्चा की। कुछ टीवी चैनल्स ने तो इजराइल की बहुत डिटेल में वहां क्या स्थिति है और क्या क्या उसकी उपलब्धियां हैं यह भी दिखाया। तो देखिए इसका साफ मतलब है कि इजराइल के बारे में जो टीवी चैनल्स, न्यूज पेपर्स इतना ज्यादा लिख रहे हैं इसका अर्थ यह हुआ कि यह बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। और आप सुन रहे हैं कि 70 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, राइट। इसराइल के बारे में हम लोग इससे पहले भी बातें करते रहे हैं और आगे भी मैं इस पर एक्सक्लूसिवली मुख्य विषय के तहत बात करूंगा। इसका मतलब है कि इसराइल में जो हमारे प्रधानमंत्री की इसराइल यात्रा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री उसके बाद जर्मनी जाएंगे जहां G20 की बैठक में वो भाग लेंगे। G20 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ 20 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सिविल सर्विस में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं उसे देखते हुए बहुत जरूरी है कि आप G20 के बारे में जाने, कब हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, सामान्य तौर पर कौन कौन इसके सदस्य हैं, इस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अमित, जब हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो चुकी होगी, जब बैठक हो चुकी होगी, तो हम मेरी कोशिश होगी कि इस पर भी हम लोग अलग से बात करें। आगे आपने न्यूज में यह भी सुना कि किस किस तरह के समझौते, किन किन विषयों पर भारत और इसराइल के बीच में समझौते होने की संभावना है। मैं अभी उन्हें दोहरा नहीं रहा हूं, उन्हें आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रख लें, क्योंकि वो थोड़ी सी पृष्ठभूमि का काम करेगा। इससे पहले कई बार इसराइल के बारे में जो चर्चा हुई, मैंने आपको बताया है कि टपक सिंचाई प्रबंधन, मतलब जल प्रबंधन के मामले में तो वो बहुत ही अद्भुत देश रहा है, भारत को इसकी बहुत जरूरत है। आपके डिफेंस के मामले में बहुत आगे है, अंतरिक्ष और साइबर के मामले में भी उसका काफी उसको महारत हासिल है। तो बट नेचुरल है कि इन विषयों पर ही भारत के साथ उसके समझौते होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, एक खबर आपने और सुनी है, वो है कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं सलाउद्दीन, आप देख रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि हां, भारत में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में उनके संगठन का हाथ रहा है। अब बट नेचुरल है कि सीधे सीधे आपके नाम की सलाउद्दीन जो है वो कौन है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है, भारत में ही होने वाली आतंकवादी घटनाओं से नहीं, बल्कि अब आप देखिए कि वैश्विक जो आतंकवादी घटनाएं होने लगी हैं वो भी चिंता का बहुत बड़ा कारण है, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क इस मायने में थोड़ा रुकिए और सोचिए। आपको मालूम होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तो ट्रंप से मुलाकात से पहले अमेरिका ने इसे आतंकवादी घोषित किया कि सलाउद्दीन आतंकवादी है, राइट? तो बट नेचुरल है कि हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, उसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिजबुल जो मुजाहिदीन संगठन है, ये 1989 में बना था, किसी और दूसरे व्यक्ति ने बनाया था, और ये बेसिकली कश्मीर में जो अलगाववादी गतिविधियां हो रही हैं वही इसकी गतिविधियां हैं, कि किस तरह से कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। और जो मजेदार बात यह कि जो हिजबुल मुजाहिदीन का जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ट्रांसलेशन होगा पवित्र योद्धाओं का दल या पवित्र योद्धाओं की पार्टी, इंग्लिश में हम कहेंगे पार्टी ऑफ होली वॉरियर्स। अब ये अपने उद्देश्य को पवित्र उद्देश्य कहते हैं, और यही वो इस्लाम का शब्द का, इस्लाम धर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। मित्रों, बहुत पहले भारत इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, यूरोपियन यूनियन भी इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, और अमेरिका ने भी इसे घोषित कर दिया है। और बट नेचुरल है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी पाकिस्तान के फेवर में है, ये पाकिस्तान के समर्थक हैं, और जो सलाउद्दीन है वो इस संगठन का अभी कमांडर है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां ये संगठन एक्टिव है, वहीं इसका मुख्यालय है, और वहीं ये अपने काम को, गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं, राइट फ्रेंड्स? अब एक छोटी सी सूचना है, और खासकर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है, और वह यह है कि जो देश का सबसे बड़ा जो स्किल पार्क है, जिसे नाम दिया गया है वैश्विक कौशल पार्क, वह भोपाल में तैयार हो रहा है, और इस पार्क से, इस संस्थान से आप कह लीजिए कि 1000 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को खासकर इसकी जानकारी होनी चाहिए, और भोपाल में इसे खोला गया है, शुरू किया जाएगा, उद्घाटन अभी होगा, ये तो अभी शुरुआत है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि भोपाल चूंकि देश के बिल्कुल मध्य में है, ऑलमोस्ट मध्य में है, तो उसका भी फायदा जो लोग भी यहां प्रशिक्षित होने आएंगे उनको मिलेगा। मित्रों, इसके बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, खासकर मेंस की दृष्टि से, आपने न्यूज में सुना देखा कि सन 2015 बैच के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें संबोधित किया, और उसमें उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही है वो ये है कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं इन्हें अब बदलाव के एजेंट के रूप में काम करना है, भूमिका निभानी है कि देश में जो बदलाव हो रहे हैं कैसे वो तेजी से बदलाव हो, कैसे तेजी से हो और सही दिशा में हो, मतलब एक एजेंट के रूप में काम करना है, चेंज के एजेंट के रूप में। ये इंडिपेंडेंट अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है प्री एग्जाम ए मेंस एग्जामिनेशन का, इस पर भी आप लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए। इसके बाद मित्रों, अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, डीडी न्यूज में एक फैक्ट आया था, बहुत अच्छा फैक्ट था, जो इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम था। एक्सपर्ट आए थे, फॉर्मर डिप्लोमेट थे, उन्होंने ये बताया कि ट्रंप ने अभी अपने आप को, यानी कि अमेरिका ने अपने आप को पेरिस जलवायु सम्मेलन से अलग कर लिया है, आपको अच्छी तरह से मालूम भी है। लेकिन वहां के जो राज्य हैं, है ना, अमेरिका में जो राज्य हैं, जो अमेरिका के राज्यों को बहुत अधिक अधिकार है, उनकी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंसी है, वो भारत, हालांकि उनका भी संघात्मक रूप है, भारत का भी संघात्मक रूप है, लेकिन हमारे भारत के राज्य उतने स्वतंत्र नहीं है बहुत से मामलों में जितने कि अमेरिका के राज्य हैं। इसीलिए आपको मालूम अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, मतलब एक व्यक्ति अमेरिका के देश का नागरिक होता है और अपने राज्य का भी नागरिक होता है, जबकि हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब इतने पावरफुल है वहां के स्टेट। तो मित्रों, उन राज्यों ने, उनमें से बहुत से राज्यों ने ये अपनी तरफ से कहा है कि हम जो पेरिस जलवायु सम्मेलन में जो बातें कही गई हैं, हम अपने यहां उनको लागू करेंगे। एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राष्ट्रपति कहते रहे कि हम लागू नहीं करेंगे, हम नहीं मानते हैं, लेकिन अगर उसे राज्य लागू कर दें तो पूरा अमेरिका लागू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये आपको नोट कर लेना चाहिए कि मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के अलग हो जाने के बावजूद इनफैक्ट अमेरिका अलग नहीं है, राइट। मित्रों, इसके बाद फिर आज के अखबारों में आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि जीएसटी लागू होने के बाद दो चीजें इंपॉर्टेंट हो रही हैं। आप देखिए, पहला तो यह कि 22 राज्यों ने अपने जो नाका होते थे, जहां पर ट्रकों को रुक करके और अपना उनका चुंगी टैक्स उनको पटाना पड़ता था, वो खत्म कर दिए, क्योंकि पूरा अब बाजार एक हो गया है तो बात ही खत्म हो गई। और वहां पर न केवल ट्रकों के कई घंटे बर्बाद होते थे, बल्कि सच पूछे तो करप्शन के वो बहुत बड़े हमारे अड्डे बन गए थे, बहुत बड़े अड्डे बन गए थे करप्शन के। और ये अनुमान लगाया गया है कि केवल नाकों के खत्म हो जाने से, मतलब टोल खत्म हो जाने से लगभग लगभग 90,000 से 1,00,000 करोड़ रुपए का सालाना फायदा होगा, ये माना जा रहा है। और जो सामान भी है वो बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा, यानी कि जो इकोनॉमी है उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और दूसरा फैक्टर यह है कि आप देख रहे हैं कि इसके बाद से भारत का शेयर मार्केट लगातार बढ़ रहा है। शेयर मार्केट का बढ़ना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रति अच्छी संभावनाओं का संकेतक होता है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट जो फैक्ट्स हैं वो दो मैं आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। एक तो हमारे जो के वेणुगोपाल हैं, अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। ये महान्यायवादी एक तरीके से यूं कह लीजिए कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस होंगे उन्हें वहां लड़ने, यानी कि सरकार का प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे, सरकार की बातें रखेंगे। तो आप एक तरीके से कह लीजिए कि सरकारी वकील, लेकिन ये शब्द बहुत छोटा है, वो है महान्यायवादी एडवोकेट, वो अटॉर्नी जनरल। मित्रों, इसी के साथ ही मैं आपको दो शब्दों के बारे में बताना चाहूंगा, ये भी आपने सुना होगा, एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल, है ना। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो भारत, उसका जो हिंदी अनुवाद है वह भारत का महाधिवक्ता, जो अटॉर्नी जनरल है वो महान्यायवादी है, और जो सॉलिसिटर जनरल है वो महाधिवक्ता है। यानी कि अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए जो दूसरे अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल, ये सेंटर में होते हैं। लेकिन स्टेट में भी सरकारी, सरकार को एक ऐसे अधिकारी कुछ चाहिए, तो जो सरकार में होते हैं उनको कहा जाता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। यानी कि जो राज्य के, इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो केंद्र में अटॉर्नी जनरल है वही राज्य में एडवोकेट जनरल है, राइट। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उसी रूप में आप कह लीजिए कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो ये अंतर आपको मालूम होना चाहिए। मित्रों, इसके बाद एक और अपॉइंटमेंट हुआ है। आपको मालूम है कि अचल कुमार ज्योति जी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जो आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। यहां मैं आपको थोड़े से एक तथ्य बता दूं कि इस बार के प्री एग्जामिनेशन में देखिए एक फैक्ट पूछा गया है कि जो निर्वाचन आयोग है वो 5 सदस्यीय है ना, या बस इस तरीके से चीजें आजकल पूछे जाने लगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय है। सच पूछिए तो संविधान के लागू होने के बाद से, यानी कि 1950 से 1989 तक एक सदस्य था, एक ही सदस्य चुनाव आयोग में आयुक्त के रूप में हुआ करता था। लेकिन एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, और उस संशोधन के जरिए जो मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष अभी तक चालू है। इस संशोधन को 89 में लागू किया गया था, और उसी समय सरकार ने भी जो चुनाव आयोग है उसको 3 सदस्यीय बना दिया, 3 सदस्यीय आयोग हो गया। अभी भी हमारा जो आयोग है वो 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में था। फ्रेंड्स, भारत और चीन के बीच जो अभी तनाव सा बना हुआ है उसे आप देख रहे हैं, उसके बारे में चैनल्स पर भी काफी आ रहा है, अखबारों में भी काफी बातें आ रही हैं। उसमें 2-3 शब्द हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। एक शब्द है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी देखिए, जो भले ही यह आपको जब पेपर में पूछा जाएगा तो ज्योग्राफी का शब्द लगेगा, ज्योग्राफी का टॉपिक लगेगा, लेकिन इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो चुंबी घाटी है ये कहां है, तिब्बत में है, हिमालयन क्षेत्र में है, या और कहां है, राइट? हिमालयन क्षेत्र में ये चुंबी घाटी है, और इसी चुंबी घाटी में एक पठार है, डोकलाम पठार। डोकलाम ये भी आपको मालूम होना चाहिए, डोकलाम पठार। ये जो डोकलाम पठार है ये बेसिकली भूटान के अधिकार क्षेत्र में है, भूटान के अधिकार क्षेत्र में है। जो अभी जो तनाव की जो जड़ है वो ये है कि चीन इस डोकलाम पठार में एक सड़क बनाना चाह रहा है, और अगर वो सड़क बना लेता है तो वो सीधे सीधे जो पूर्वा मतलब उसका उसका मकसद ये है कि भारत को उसके पूर्वोत्तर इलाके से काट लिया जाए। मित्रों, ये जो 2 शब्द हैं मैंने आपको बताया, चुंबी घाटी और डोकलाम पठार, इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जो डोकलाम में जो चुंबी घाटी है ये 9,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है, आप देख लेंगे, आपको थोड़ी सी जानकारियां इसके बारे में मिल जाएंगी। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ी सी जानकारी लेनी है, और ये जो पूछा जाएगा ये इनफैक्ट प्री का ही क्वेश्चन होगा। लेकिन हाँ, अगर भारत और चीन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ते चले गए तो मेंस का भी ये प्रश्न बन सकता है, लेकिन तब वो अलग तरीके से बनेगा। मतलब वो चुंबी घाटी और डोकलाम पठार को लेकर के प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो तनाव पर प्रश्न पूछेंगे। तो मित्रों, ये कुछ आज के फैक्ट्स थे, और आपने देखा कि इसमें से कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं है जिनकी हम अनदेखी कर सकें। इस तरह की अनदेखियां कभी कभी बहुत महंगी भी पड़ जाती हैं, और मैं यह भी नहीं चाहता था कि मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कह के, यानी कि जिसको कहते हैं कि छू करके और निकल जाऊं और अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लूं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी उनके बारे में बताने की कोशिश की है, ताकि थोड़ी कम से कम कुछ देर के लिए तो ये फैक्ट आपके दिमाग में मौजूद रहे। तो दोस्तों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आज बहुत थोड़ी सी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लेंगे। और मैं अब आता हूं अपने अंतिम चरण पर, और इस अंतिम चरण में मित्रों मैं स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवम्बर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शंकर लाल मीना दौसा राजस्थान से, डॉक्टर विकास कनौजिया लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश से, विनोद नारायण कोरेत नागपुर महाराष्ट्र से, राम नरेश भदोही उत्तर प्रदेश से, प्रतीक प्रभाकर नालंदा बिहार से, अमित कुमार बागपत बिहार से, सक्षम आनंद जबलपुर मध्य प्रदेश से, और सत्या किशनगढ़ राजस्थान से। आप सभी आठों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।